अध्याय 9। हमारी बस एक विशाल रेगिस्तान से गुजरी, जहां मिट्टी से बने घरों के कुछ गांव थे। हमने समतल भूमि पर चलते ऊंटों का कारवां देखा। ऊंटों ने भारी बोझ उठाया था, लेकिन फिर भी वे आसानी से चल रहे थे। उनकी लंबी गर्दन शरीर के शेष अंगों के साथ पूर्णतः मेल बैठाकर लयबद्ध आगे पीछे झूम रही थी। सूरज की तपन में बंजारे अपने सिर पर मटमैली पगड़ियां बांधे या तो ऊंटों के ऊपर बैठकर या उनके साथ चलकर जा रहे थे। ईरानी मरुभूमि के स्वच्छ आसमान के नीचे ये एक ऐसा जीवन था जिससे मैं पूरी तरह अनभिज्ञ था। मुझे लगा मानो मैं काल में पीछे चला गया हूं। पश्चिमी क्षितिज में जैसे ही सूर्य ने जाकर विश्राम किया, वैसे ही सितारों से जगमगाती फारसी रात चली आई। जब कुछ इतना शांत और स्थिर था कि मैं सपनों की दुनिया में खो गया, कुछ ही मिनटों पश्चात मेरी नींद खुली और तेज प्रकाश से मेरी आंखें चूंधी आ गई। नियॉन साइनों के सामने आकाश के सितारे फीके पड़ गए थे। मोबिल, शेल, एक्सॉन, टेस्क को ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो हमारी बस एक टाइम मशीन बन गई थी और हमने कुछ ही मिनटों में अनेक शताब्दियां पार कर ली हों। मुझे और ड्राइवर को छोड़कर सभी गहरी निद्रा में लीन थे। हम तेहरान की सीमा के निकट पहुंचे थे, जहां ईरान के शाह ने विदेशी तेल की कंपनियों का खुले दिल से स्वागत किया था। बस में बैठे हुए मुझे शहर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो नियॉन साइंस से जगमगाता एक द्वीप प्राचीन मरुस्थल के सागर में तैर रहा हो। तेहरान में कुछ सहयात्री हम तीनों को एक ऐसे होटल में ले गए जहां पर नियमित रूप से पश्चिमी युवा आते थे। अपने कमरे की ओर बढ़ते हमारे प्रत्येक पग के साथ हशीश की तीखी गंध बढ़ती जा रही थी। इंग्लैंड, जर्मनी और कैलिफोर्निया से आए हिप्पी अपने पलंगों पर अचेत लेटे थे और बाकी लोग फर्श पर पड़े थे। आयरन बटरफ्लाई का इन अ गड्डा डड़विडा गीत स्टीरियो स्पीकर पर गड़गड़ा रहा था। हर कोई नशे में धुत था। एक युवक जिसके सुनहरे भूरे बाल उसके चेहरे पर बिखरे थे, लड़खड़ाता हुआ हमारे पास आया। ए दोस्तों, स्वागत है। उसकी अधखुली आंखें लाल थी और उच्चारण अस्पष्ट। ऐश करो और मजे लूटो। अपने हशीश का गहरा कष्ट लेकर उसने चिलम हमारी ओर बढ़ाई। लो, सुट्टा मार लो। मेज पर गेंदाकार हशीश के अनेक गोले पड़े थे। कमरे में बैठे लोग लगातार उसमें से टुकड़े काट काट कर चिलम में भर रहे थे या उन्हें सीधा खा रहे थे। यद्यपि हम भी नशा किया करते थे, लेकिन ये तो हद थी, बिल्कुल हद। हम स्तब्ध रह गए। राम से रहा नहीं गया। रामसे से वो बोला, उठा ईगेड़, यहां पर 1 ग्राम भी हशीश रखने की सजा मौत है। फिर भी तुम लोगों ने यहां कई किलो हशीश खुले आम रखी है। जेफ बीच में बोला, तुम लोग पागल हो क्या? तुम्हारे दरवाजे में धौंकनी के समान धुआं निकलकर हॉल में जा रहा है, इसके लिए तुम मारे जा सकते हो। फर्श पर लेटे एक हिप्पी ने करवट बदली और चिल्लाया, निकम्मो, डरपोक कहीं के, दफा हो जाओ यहां से। उलझे हुए सुनहरे बालों वाली एक लड़की मुंह में आलू के चिप्स ठूंस कर उन्हें जोर से चबा रही थी। झिड़कती हुई वो बोली, क्या हुआ है तुम लोगों को? ज्यादा सीधे बन रहे हो क्या? डरो मत दोस्तो, हमारा मेजबान लड़खड़ाते हुए बोला, या तो हमारे साथ आ जाओ, नहीं तो फुट लो। हमें इन बादलों में उड़ान भरने दो। हमारे इन बादलों के बीच में मत आओ। चिलम से कष्ट लेते हुए उसने धुएं का एक बादल छोड़ा। इन तीनों में एक दूसरे की ओर अविश्वास से देखा। जेफ बोला, हमें यहां से चलना चाहिए। अमेरिकी सरकार की चेतावनी हमारे मन में कौंध रही थी। सीढ़ियों द्वारा तेजी से नीचे उतरते हुए हम सीधा 3 पुलिस वालों से जा टकराए जो ऊपर ही आ रहे थे। मुझे लगा कि वे हिप्पी सही में बादलों में उड़ रहे थे और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि अब कुछ बिजली और गड़गड़ाहट भी उनके लिए आ रही थी। तेहरान में मैंने इस्लाम के अनुयायियों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। धर्म उनके जीवन का अभिन्न अंग था और उनकी चेतना में रचा बसा प्रतीत हो रहा था। मैं भगवान से प्रेम करने वाले साधारण मुसलमानों की धर्मनिष्ठा देखकर बहुत प्रभावित हुआ, लेकिन उसी धर्म के नाम पर उग्रवाद का पालन करने वालों को देखकर डर से कांप भी उठा। विश्व के धर्मों को सार की खोज करते हुए मुझे आशा थी कि शायद एक दिन इसे सही तरह से समझ पाऊंगा। ईरान के देहातों में घूमते हुए हम मशाहाद में आए, जो शिया मुसलमानों का तीर्थस्थल है। यहां मैंने कुछ समय अकेले रहने की इच्छा व्यक्त की और जफ और राम से आगे निकलकर अफगानिस्तान के काबुल शहर में मुझसे मिलने के लिए तैयार हो गए। मशाहाद में मैंने अवश्य ही एक निराला दृश्य उत्पन्न किया होगा। कमर तक लंबे बालों वाला एक अमरीकी युवक, जिसने बंद गले की टी शर्ट और पतली धारीदार जीन्स पहनी थी और जो मस्जिद के सामने अकेला बैठकर या तो कुरान पढ़ता था या फिर ध्यान करता। एक व्यक्ति ने मुझे दूर से देखा और मुझमें रुचि लेते हुए मेरे पास आए। वे लगभग 40 वर्ष और लंबे कद के थे। उनकी साफ भूरी आंखें एवं गोरा रंग था और उन्होंने बेदाग सफ़ेद वस्त्र और पगड़ी पहनी हुई थी। उन्होंने आदर से अपना सिर झुकाया, महाशय मुझे अपना परिचय देने दें, मेरा नाम इब्राहिम है, मैं इस पवित्र तीर्थ मशाहात का निवासी हूं। मैंने अपना हाथ उनकी ओर बढ़ाया। ऐसा लगता है कि आपको मेरे धर्म में रुचि है, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूं? मेरे जीवन के विषय में पूछताछ करने के उपरांत वे मुझे इस्लाम की शिक्षाएं देने के लिए मान गए। एक संत की सुंदर कब्रगाह के बाहर हम अध्ययन करने के लिए दो छोटे कालीनों पर बैठ गए। उन्होंने आकाश की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, सर्वशक्तिमान अल्लाह ने आपको मेरे पास इस पावन समय और स्थान पर भेजा है। इस पवित्र तीर्थ में संत इमाम रेज़ा और हारून अल रशीद के मकबरे हैं और हजारों लोग इस समय मशाहाद में इस्लामी कैलेंडर के 9वें महीने रमज़ान का पावन मास मना रहे हैं। वे रुक गए और हल्के से मुस्कुराए। फिर उन्होंने बताया कि किस प्रकार सर्वप्रथम रमज़ान के महीने में ही पैगंबर मोहम्मद को पवित्र कुरान का ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुआ था। एक गुफा में सर्वशक्तिमान अल्लाह के कृपालु संदेशवाहक जबरील ने पवित्र कुरान का ज्ञान पैगंबर को प्रदान किया था, ऐसा संदेश जो सभी प्राणियों को शांति प्रदान करेगा। फिर उन्होंने हाथ जोड़कर अपनी तर्जनियों के अग्रभाग को अपने माथे से स्पर्श किया। इस्लाम का अर्थ है सृष्टि के निर्माता सर्वशक्तिमान अल्लाह की इच्छा को समर्पित होना। कुछ कृपया ध्यान से सुनिए, मैं आपको अपनी शिक्षाएं और नित्य नियम बताऊंगा। कुछ क्षणों में घूरते तीर्थयात्रियों की एक भीड़ हमारे चारों ओर एकत्रित हो गई। इस क्षेत्र में मैं एक अजूबा था। इब्राहिम स्नेह से मुझे अपने घर के पुस्तकालय में ले गए। मैंने उनमें एक खुली मानसिकता वाला व्यक्ति तथा शास्त्रों का एक विद्वान पाया। वे अपने धर्म का सत्यनिष्ठ सा पालन करते प्रतीत हो रहे थे और साथ ही वे उदार एवं दयालु भी थे। उन्होंने अलमारी में रखे अरबी और फारसी की पुरानी पांडुलिपियों के बीच से पवित्र कुरान निकाली। कुरान से वे मंगलाचरण का उच्चारण करने लगे। फिर अपनी खुली हथेली को स्वर्ग की ओर उठाते हुए उन्होंने कहना आरंभ किया, इस्लाम सिखाता है कि खुदा बस एक है और दूसरा कोई नहीं। मोहम्मद उनके संदेशवाहक हैं। खुदा ने मानवता के लिए अपनी शिक्षाएं मोहम्मद और अन्य पैगंबरों को दी, जिसमें आदम, नूहा, इब्राहिम, मूसा और ईसा मसीहा है। मोहम्मद अंतिम पैगंबर थे। मानवता के लिए उनकी शिक्षाएं कयामत तक रहेंगी। फिर उन्होंने बताया कि कैसे सर्वशक्तिमान अल्लाह ने अपने देवदूतों को धरती पर भेजा था, जिससे श्रद्धावान लोगों को कयामत के दिन के लिए तैयार किया जा सके। इस दिन अपनी नियति के अनुसार उन्हें स्वर्ग या नरक में ले जाया जाएगा। उन्होंने बताया कि मुसलमान विश्वास करते हैं कि मानवता के लिए ईश्वरीय ज्ञान का प्रमुख लिखित स्रोत कुरान है और वही मानवता के लिए ईश्वर का अंतिम संदेश है। उन्होंने मुझे मुसलमानों के 5 अनिवार्य नियमों के विषय में भी बताया, जिनका उन्हें आजीवन पालन करना होता है। परमेश्वर के रूप में अल्लाह पर विश्वास रखना, दिन में 5 बार नमाज अदा करना, रमज़ान के महीने में उपवास रखना, गरीबों को दान देना और जीवन में कम से कम 1 बार हज यात्रा करना। इस प्रकार घंटों तक इब्राहिम ने मुझे अपने धर्म के इतिहास और शिक्षाओं का ज्ञान दिया। वे अत्यंत सज्जन थे, उस व्यक्ति से पूरी तरह से भिन्न जिसने अर्जेरियम में चाय की दुकान पर मुझे खुदा का नाम चिल्लाने के लिए बाध्य किया था। मैं बहुत ही असाधारण तरीकों से सीख रहा था कि कैसे प्रत्येक धर्म में अनेक स्तर के साधक होते हैं, और यदि हम केवल कुछ अनुयायियों को देखकर पूरे धर्म के प्रति अपनी अवधारणा बना लेते हैं तो हमारी मानसिकता बहुत ही संकीर्ण हो जाएगी। जब मशाहात के ऊपर एक सुनहरा आवरण डालते हुए सूरज ढल रहा था, तब इब्राहिम ने मुझे सूखे मेवों का एक सुंदर सजा हुआ डिब्बा देकर अलविदा किया और स्वयं रमज़ान का व्रत खोलने अपने परिवार के पास चले गए। यहाँ 9वां अध्याय समाप्त होता है।